नमस्कार भारत, 3 फरवरी दिन शुक्रवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। पंजाब और गोवा में विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार खत्म, यहां 4 फरवरी को होना है मतदान। पंजाब में ड्रग्स के मुद्दे पर बादल सरकार पर बरसे राहुल।
चिट्टे ने किसान से उसका बेटा ले लिया, छीन लिया, पंजाब को बर्बाद कर, तो हमारा पहला काम चिट्टे को पंजाब से हमेशा के लिए मिटाने का हो।
बीजेपी ने कहा अखिलेश ने यूपी में अच्छा काम किया है तो उन्हें कांग्रेस की जरूरत क्यों?
समाजवादी पार्टी के साथ जो कांग्रेस का गठबंधन है वो कोई बहुत सफल रहने वाला नहीं है, हताशा का गठबंधन है।
नागालैंड में महिला आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन की आग राजधानी कोहिमा तक पहुंची, होगी अखबारों की समीक्षा और सुनवाएंगे वॉशिंगटन डायरी, लेकिन पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। भारत के 2 राज्यों पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार गुरुवार शाम थम गया है। दोनों राज्यों में कल मतदान होगा। जहां पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे, गोवा में 40 सीटों के लिए प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। वोटों की गिनती 11 मार्च को होगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को दिए गए 33% आरक्षण का विरोध हो रहा है। हजारों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी कोहिमा में मुख्यमंत्री आवास को घेर लिया और कोहिमा म्यूनिसिपल भवन समेत कई सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारी आरक्षण को गैर लोकतांत्रिक बता रहे हैं और उसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। रोमानिया के बुखारेस्ट और कई अन्य शहरों में हजारों लोग सरकार के उस फरमान का विरोध करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं जिसके अनुसार कुछ तरह के भ्रष्टाचार को मान्यता मिल जाएगी। बुधवार रात करीब 2.5 लाख लोगों ने विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। साल 1989 में साम्यवादी सरकार के पतन के बाद देश में यह अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। आज शाम बुखारेस्ट में जमा हुए प्रदर्शनकारियों ने ड्रम बजाया और नारे लगाए। प्रदर्शन में हिस्सा ले रही एंड्रिया मुरारू ने बताया,
We are aware that big corruption means misuse of public budget.
हमें पता है कि भ्रष्टाचार का मतलब होता है जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल और इसका मतलब है जनता को मिलने वाली सुविधाओं का स्तर खराब होना। इसका सीधा असर हमारी और नागरिकों की जिंदगी पर होता है। हम सरकार के विरोध में नहीं हैं, उन्होंने 1 महीने पहले ही चुनाव जीता है और उनका आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रम भी बढ़िया है। हम देखना चाहते हैं कि उनका प्रक्रिया कितना बढ़िया है, लेकिन वो इस तरह के फरमान अपनाना चाहते हैं और हम इसके खिलाफ हैं। ये थी रोमानिया में प्रदर्शन में हिस्सा ले रही एंड्रिया मोरारू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के बीच कल तीखी जुबानी जंग हुई। सालाना कार्यक्रम नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में हिस्सा लेते हुए ट्रंप ने कहा था कि आर्नल्ड सेलिब्रिटी अप्रेंटिस नाम के जिस कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हैं उसकी रेटिंग के लिए लोग प्रार्थना करें। ट्रंप ने कहा कि उनकी जगह लेने के लिए बड़े फिल्म अभिनेता को लिया गया था, लेकिन कार्यक्रम की रेटिंग गिरती चली गई। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में उतरने से पहले ट्रंप टेलीविजन कार्यक्रम दी अप्रेंटिस के होस्ट थे। बाद में कार्यक्रम का नाम बदल दिया गया और आर्नल्ड इसके होस्ट बने। ट्रंप की आलोचना के जवाब में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा,
Hey Donald, I have a great idea. Why don't we switch jobs? You take over TV.
डोनाल्ड, मेरे पास आपके लिए एक बढ़िया सुझाव है। चूंकि आप रेटिंग्स के मामले में एक विशेषज्ञ हैं, आप टीवी पर आ जाएं और मैं आपका काम ले लेता हूं। कम से कम इसके बाद लोग चैन से सो सकेंगे। ये थे अभिनेता आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के शब्द। मोबाइल टैक्सी ऐप कंपनी ऊबर के कार्यकारी अधिकारी ट्रैविस कालानिक ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकारों की टीम से इस्तीफा दे दिया है। ऊबर के कर्मचारियों को भेजे गए एक मेमो में उन्होंने बताया कि हाल में 7 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमरीका आने पर अस्थायी पाबंदी वाले ट्रंप के आदेश के विरोध में वो इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप के व्यापार सलाहकारों की टीम का हिस्सा होने का मतलब यह कतई नहीं कि हम उनके एजेंडे का समर्थन करते हैं। ट्रंप के इस आदेश का विरोध करते हुए सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के कर्मचारियों ने अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ACLU को $10,00,000 यानी £7,90,000 का दान दिया है। ACLU ने ट्रंप के आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। ACLU का कहना है कि बीते कुछ दिनों में उन्हें लोगों से $2 करोड़ से अधिक का दान मिला है। बीबीसी समाचार।
आज आज है 3 फरवरी दिन शुक्रवार। नमस्कार, भारत में अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज प्रियदर्शी का। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं लाइव। श्रोताओं के लिए एक जरूरी सूचना, शनिवार 4 फरवरी से शाम का कार्यक्रम दिन भर आप शॉर्टवेव 5885 किलोहर्ट्ज़, 7600 किलोहर्ट्ज़, 9740 किलोहर्ट्ज़ और 11995 किलोहर्ट्ज़ पर सुन पाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत विधानसभा चुनाव से। पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कल शाम खत्म हो गया। दोनों राज्यों में 4 फरवरी यानी कल मतदान होना है। पहले चर्चा पंजाब की, जहां विधानसभा की 117 सीटें हैं। कल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सत्ताधारी अकाली दल, भाजपा गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हर पार्टी राज्य में सरकार बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेस बादल सरकार को घेर रही है और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साध रही है, तो अकाली भाजपा गठबंधन को यकीन है कि लगातार तीसरी बार राज्य में उनकी ही सरकार बनेगी। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली जैसा चमत्कार दिखाने का दम भर रही है। एक रिपोर्ट के साथ हैं निखिल रंजन।
पंजाब में प्रचार का शोर थमने के पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी संगरूर के लोगों से रूबरू हुए। 10 साल से प्रदेश की सत्ता से बाहर कांग्रेस की वापसी की राह तलाशते राहुल ने पंजाब को उसकी ताकत याद दिलाने की कोशिश की।
पंजाब ने पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखाया है। आपका जो गेहूं है वो आंध्रा, तमिलनाडु, असम, गुजरात, हर प्रदेश में जाता है। ये जो आपकी शक्ति है ये उस सोच से बनी कि सब कुछ तेरा है।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने पंजाब के लोगों की अनदेखी की है। उन्होंने ड्रग्स का मुद्दा भी उठाया और वादा किया कि सरकार बनने पर पंजाब से ड्रग्स की समस्या को खत्म किया जाएगा।
चिट्टे ने किसान से उसका बेटा ले लिया, छीन लिया, पंजाब को बर्बाद कर दिया। तो हमारा पहला काम चिट्टे को पंजाब से हमेशा के लिए मिटाने का हो।
राहुल गांधी ने पंजाब के विधानसभा चुनाव मैदान में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। उधर आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है कि पंजाब में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं और कांग्रेस और सत्ताधारी गठबंधन कहीं मुकाबले में भी नहीं है। आम आदमी पार्टी नेता दीपक वाजपेयी ने कहा,
नशे, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से हमारी लड़ाई है। दोनों प्लेयर कहीं लड़ाई में नहीं है। दरअसल जो बदलाव लोग चाहते भी हैं वो इनसे बदलाव नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि नशे, भ्रष्टाचार, गुंडा राज, इससे कैसे छुट्टी मिले। इसीलिए कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी कभी विकल्प नहीं हो सकती है। पंजाब बदलाव के लिए तैयार है। अब हम दूसरे चरण में जो होता है प्रचार थमने के बाद अपने बूथ मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही सत्ताधारी गठबंधन को खारिज कर रहे हैं, लेकिन अकाली दल के नेताओं का दावा है कि पंजाब में लगातार तीसरी बार अकाली दल की अगुवाई में सरकार बनेगी। अकाली दल के विधायक रविंदर सिंह कहते हैं,
मैं ना राहुल की बात पे यकीन करता हूं तो ना मैं आप पार्टी जो खारिज कर रही है हमको उनकी बात पे यकीन करता हूँ। मैं तो वोटरों के पर यकीन करता हूँ जिनके लिए हमने सारे पंजाब में सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब और वड्डे बादल साहब जी ने काम किया। जो किसानों के लिए पंजाब सरकार ने, अकाली दल की सरकार ने किया है, ना जिंदगी में कभी किसी ने किया, ना कर सकते हैं। किसानों को बिजली फ्री एक बहुत बड़ी राहत है।
प्रचार का शोर थमने के बाद नेता घर घर जाकर वोटरों का मन परखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वादों और दावों से घिरे मतदाता पंजाब की तकदीर बदलने की जिम्मेदारी किसे देंगे, ये चुनाव के नतीजों से ही तय होगा।
पंजाब के साथ साथ गोवा में भी कल चुनाव प्रचार खत्म हो गया। यहां कल 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। यहां बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा आरएसएस के एक बागी गुट और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का गठबंधन भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है। काफी दिलचस्प हो चुके गोवा के सियासी समर के बारे में हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने बात की वरिष्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसाई से और पूछा कि यहाँ कौन कौन सी पार्टियां दम दिखा रही हैं।
गोवा में टोटल कुल मिला के 251 कैंडिडेट्स हैं। उसमें मेन 4 पार्टीज है, एक तो कांग्रेस है, दूसरी भारतीय जनता पार्टी और तीसरी आम आदमी पार्टी और चौथी एक पार्टी है महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी। और आरएसएस वाले जो यहाँ है उन्होंने, उनकी रेबेलियन हुई थी, वो सब इकट्ठा हुए, उन्होंने गठबंधन बनाया है तो उनकी पार्टी, ऐसे चार मेन पार्टी पक्ष है यहाँ, उनके बीच मुकाबला होगा ऐसा लग रहा है।
कांग्रेस सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, आम आदमी पार्टी एक नया इतिहास बनाने की तैयारी में है गोवा में, आरएसएस का जो धड़ा है उससे भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की आशंका बताई जा रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं?
भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव तो बहुत एक चुनौती जैसी है, क्योंकि एक तरफ तो यह है कि उन्हीं के लोग जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उन्होंने तो अलग पक्ष ही बना दे रखा है, तो उसका इम्पैक्ट होगा ही उनके ऊपर। और पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी थी, और कुल मिला के दोनों का गठबंधन मिला के 21 सीट उन्हें पहले मिले थे। अभी वो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी भी वो आरएसएस के साथ गई है, तो एक बाजू में तो ये है उसकी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को है ही। दूसरी बाजू से कांग्रेस जो पहले बहुत ही इनएक्टिव जैसी थी, वो बहुत एक्टिव बन गई है इस चुनाव में, और उसी समय आम आदमी पार्टी भी आए हैं, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक बाजू में और दूसरी बाजू में भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और रेबेलियन आरएसएस का गठबंधन, ऐसी परिस्थिति है। तो ये फोर कॉर्नर जैसी फाइट हो रही है, तो देखना पड़ेगा इसमें क्या होगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला बन गया है गोवा में पहली बार।
स्थिति बिल्कुल धुंधली है, साफ नहीं है कि राजनीतिक तस्वीर वहां कैसी है।
धुंधली तो है ही, क्योंकि ऐसा है कि वोटर जो है बहुत साइलेंट बन गया है, इससे पहले तो इतना साइलेंट मतदाता कभी नहीं था, तो ये साइलेंट मतदाता क्या करेगा ये अभी तक चित्र स्पष्ट नहीं हो रहा है।
संदेश प्रभु देसाई से बात कर रहे थे वात्सल्य राय, और अब चर्चा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जहां सियासी पारा तेजी से ऊपर जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज आगरा में होंगे। दोनों नेता एक साथ रोड शो करेंगे। गठबंधन के बाद से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर हमला बोल रहे हैं, वहीं बसपा इस गठबंधन को खारिज करने में जुटी है। एक रिपोर्ट के साथ है वात्सल्य राय।
यूपी को ये साथ पसंद है का नारा देने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज एक बार फिर एक साथ नजर आएंगे। लखनऊ में एकजुटता के प्रदर्शन के बाद ये दोनों नेता आज आगरा में एक साथ रोड शो करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी कहते हैं,
श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी मिलकर के इस देश की राजनीतिक दिशा बदलना चाहते हैं।
लेकिन बहुजन समाज पार्टी को अखिलेश और राहुल का साथ रास नहीं आ रहा है। पार्टी प्रमुख मायावती ने कल पश्चिम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की एक रैली में इस गठबंधन पर सवाल उठाए। मायावती ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन असर नहीं छोड़ पाएगा। मायावती ने कहा,
कांग्रेस पार्टी अपने राज्य के स्वार्थ में अपने मूल सिद्धांतों को भी साथ पर रखकर यहाँ बीजेपी के इशारों पर सरकार चलाने वाली समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है।
भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर सवालिया निशान लगाती रही है। हालांकि कांग्रेस को इसमें बीजेपी और बीएसपी की हताशा नजर आती है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया कहते हैं,
भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये तो हमारे दूर विरोधी हैं। आज लोगों को आशा नजर आ रही है अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी के विलय का, दोस्ती का, और लोगों को ये साथ पसंद है। तो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अगर इसको पसंद नहीं करते तो वो रहें, वो पूरी तरह से मार्जिनलाइज हो जाएंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है।
यूपी को राहुल और अखिलेश का साथ कितना पसंद है ये आगे साफ होगा, लेकिन फिलहाल ये दोनों नेता जब भी एक साथ आते हैं गठबंधन को चर्चा दिलाने में कामयाब जरूर हो रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कल तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। इसमें वरुण गांधी और विनय कटियार को भी जगह दी गई है। ये दोनों नेता अब तक हाशिए पर थे। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने विनय कटियार से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि लिस्ट में नाम आने पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है।
नहीं, मुझे मालूम नहीं है क्या है, अभी तो हमको मालूम भी नहीं कि मैं स्टार प्रचारक सूची में आ गया हूँ, पहले से रहा होगा।
सवाल तो आता ही है कटियार साहब की आप उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेताओं में हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, फिर इतनी देरी क्यों?
ये मालूम नहीं है, संगठन का जो निर्णय है वो मान्य, जो संगठन निर्णय करती है वो मान्य करना पड़ता है।
फिलहाल आप उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति देख रहे हैं?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के साथ जो कांग्रेस का गठबंधन है वो कोई बहुत सफल रहने वाला नहीं है, हताशा का गठबंधन है। अगर 5 साल अखिलेश ने काम किया होता तो कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ती, उनको उनके साथ गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती, और बसपा तो कहीं है नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रही।
मुद्दों की बात करना चाहूंगा। एक ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता है कि मुद्दे लगातार भटकते रहे, कभी पलायन की बात होती है, कभी विकास की बात होती है, उसके बाद फिर घोषणा पत्र में राम मंदिर का भी जिक्र आ जाता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के साथ मैदान में है?
नहीं, ये सब मुद्दे हैं, हम कोई भटकते नहीं हैं, ये सारे मुद्दे हैं। जो हिंदुओं का पलायन हुआ है उनको फिर बसाना है, जहाँ जहाँ पलायन होगा उसकी बात भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। राम मंदिर का जो सवाल है आस्था का सवाल है, और इसलिए उस पर चर्चा भी होनी चाहिए और राम मंदिर भी बनना चाहिए। अब वो अदालत के माध्यम से बने या बातचीत के माध्यम से बने या संसद के अंदर कानून बना करके बने, लेकिन राम मंदिर बनना चाहिए।
लेकिन ये जो मुद्दा है, इन पर जिस तरह से पार्टी का पहले रुख था वो रुख आज नजर नहीं आता, तो इससे कुछ कंफ्यूजन आपको लगता नहीं है कि बन गया है पार्टी में?
नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सब ठीक है। विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी का कोई विकास हुआ नहीं, उसने कुछ कराया नहीं है, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैलता रहा है और सांप्रदायिक तनाव हुए हैं, दंगे हुए हैं प्रदेश के अंदर, ये सब चीजें चली रही हैं, रोज हो रहा कुछ न कुछ है। तो उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी है, वही सरकार बना करके और अच्छा न्याय दे सकती है, राम मंदिर की भी समस्या का समाधान भी कर सकती है।
तो आखिरकार विनय कटियार का नाम आया बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने के मामले पर शुरू हुआ आंदोलन 2 लोगों की पुलिस फायरिंग में मौत के बाद हिंसक रूप ले चुका है। कल प्रदर्शनकारियों ने राजधानी कोहिमा की कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी। वे मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में महिलाओं को दिए गए 33% आरक्षण के खिलाफ जारी विरोध ने अब हिंसक रूप धारण कर लिया है। इस विरोध प्रदर्शन के कारण गुरुवार को हालात उस समय काफी बिगड़ गए जब हजारों की तादाद में जमा हुए प्रदर्शनकारियों ने राजधानी कोहिमा में कई सरकारी भवनों में आग लगा दी। बाद में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास को भी घेर लिया। उत्पन्न हुए हालातों को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था को काबू करने के लिए असम राइफल्स को लगाया गया है। ये प्रदर्शनकारी स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को दिए गए 33% आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। दरअसल शहरी निकायों में महिला आरक्षण को लेकर कुछ संगठनों ने पिछले मंगलवार को डिमापुर में विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प के बाद पुलिस फायरिंग में 2 युवक मारे गए थे। इन 2 युवकों की मौत से गुस्साए संगठनों ने डिमापुर में बेमियादी बंद का ऐलान कर दिया और गुरुवार को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी कोहिमा पहुंच गए। इससे पहले गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए शाम 4 बजे तक का समय दिया था। कोहिमा नॉर्थ पुलिस स्टेशन में तैनात एक पुलिस अधिकारी ने नाम जाहिर न करने के शर्त पर बीबीसी को बताया कि प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ गुरुवार की शाम करीब 3 बजे कोहिमा स्थित राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर के सामने पहुंची। बेकाबू भीड़ ने पहले कोहिमा म्यूनिसिपल भवन में आग लगाई, फिर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को भी जला दिया। भीड़ ने सरकारी कार्यालयों में जमकर तोड़फोड़ भी की और फिर सीएम आवास की तरफ मार्च कर गए। राज्य के 7 आदिवासी संगठन नागालैंड ट्राइब्स एसोसिएशन कमेटी के बैनर तले लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नागालैंड के शहरी स्थानीय निकायों में 16 वर्ष बाद चुनाव होने थे, लेकिन राज्य सरकार ने इस हिंसक विरोध को देखते हुए फिलहाल इसे टाल दिया है।
और अब समय है एक विशेष रिपोर्ट का। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की सूची में देश भर में सबसे पिछड़े राज्य झारखंड में शौचालय निर्माण को लेकर कई दिलचस्प मामले सामने आए हैं। एक आदिवासी लड़की ने खुद राजमिस्त्री का काम करके अपना शौचालय बनाया, वह भी छात्रवृत्ति के पैसे लगाकर। इसके अलावा जमशेदपुर की एक स्कूली लड़की के किस्से ने उसे स्वच्छता चैंपियन बना दिया है। नीरज सिन्हा की रिपोर्ट।
सर, हम दोस्तों से मिलते थे तो सब पूछते थे तुम्हारे घर में शौचालय है, तो हम शर्मा जाते थे कि मेरे घर में शौचालय नहीं था। उसके बाद जब बैठक में भी जाते थे तो वहाँ भी बात होती थी, तो मेरा मन में ख्याल आया कि हमें शौचालय बनाना चाहिए। उसको पैसा का अभाव था तो हम खुद से किए कि बने या बिगड़े एक बार बना के देखते। फिर यही मन में ठाने, फिर पैसा का प्रॉब्लम हुआ तो मेरा छात्रवृत्ति वाला पैसा उसमें से 10,000 निकाले।
यही है पुनिया ढोडराई, झारखंड की राजधानी रांची से करीब 55 किलोमीटर दूर खूंटी के सुदूर गाना लोया गाँव की रहने वाली। घर खेती का काम और कॉलेज की पढ़ाई के साथ अपने शौचालय निर्माण के लिए 2.5 महीने तक उसने ईंट गारे जोड़े, सीमेंट के प्लास्टर चढ़ाए अपने दम पर और खुद के पैसे लगाकर। अब पुनिया के इस काम पर सरकारी महकमा वाहवाही में जुटा है। ग्राम सभा में खूंटी के अनुमंडल अधिकारी भूर सिंह यादव ने इस आदिवासी लड़की को प्रशंसा पत्र के साथ 12,000 रुपये के चेक दिए हैं। प्रशासन ने पुनिया के घर में बिजली भी लगवा दिए हैं, जिससे उसके मिट्टी के घर रोशन हो चले हैं। अलबत्ता सरकार पुनिया को स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की तैयारी में है। तब गांव की पंचायत प्रतिनिधि उर्मिला देवी कहती हैं,
पुनिया ने जो काम किया है अपने बलबूते पर, जो शौचालय बनाई है और करके दिखाई कि एक महिला कुछ नहीं कर सकती, ये कहने का बात आता था, लेकिन एक लड़की या एक औरत कुछ भी कर सकती है, मन में अगर ठाने तो कुछ भी कर सकती है।
दूसरा मामला लौह नगरी जमशेदपुर का है, जहां 6ठी कक्षा की छात्रा मोन्द्रिता चटर्जी ने अपनी जेब खर्चे के पैसे बचाकर निकट के तंग बस्ती केंदाडी में सामुदायिक शौचालय बनवाए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मोन्द्रिता को सम्मानित किया है और वो जिले का स्वच्छता चैंपियन बनी है। मोन्द्रिता कहती है,
वहाँ पे टॉयलेट बनाने की सोची, तब मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया, उनको कहा कि हाँ टॉयलेट्स बहुत जरूरी होते हैं, तो वो भी बहुत हैप्पी हुए कि अभी हमारे गांव में भी टॉयलेट्स बनेंगे। और वैसे भी जो आंटियां होती थी उनको तो बाहर जाना पड़ता था नहाने वगैरह के लिए, उनको भी अभी अच्छा लगा, तुम लोग को भी टॉयलेट एक मिलेगा। और मैंने ये स्पेसिफाई किया कि उनका गांव फिर हाइजीनिक रहेगा।
जाहिर है स्वच्छता को लेकर झारखंड का नाम अगली कतार में शामिल हो, इसकी कवायद तेज है।
ये थे नीरज सिन्हा रांची से, और अब समय है अखबारों की समीक्षा का मानसी के साथ।
पंकज जी, कुछ अखबारों के पहले पन्ने पर बजट के असर की चर्चा है, तो कुछ में विधानसभा चुनावों की और कुछ में अमेरिका के लिए H-1B वीजा की। शुरुआत करते हैं जनसत्ता में छपे इरफान के कार्टून से, जो है अखिलेश के रायबरेली और अमेठी की 10 सीटों में से 7 सीटें कांग्रेस को देने के बारे में। कार्टून में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव साइकिल चला रहे हैं और कैरियर पर बैठे हैं कांग्रेस के राहुल गांधी। अखिलेश कह रहे हैं, अब ये 7 सीटें तो आपकी पक्की समझो। जनसत्ता में ही छपी एक खबर के मुताबिक राजनीतिक दलों पर बेनामी नकद चंदे की सीमा 20,000 रुपए से घटाकर 2,000 तक करने के बाद सरकार ऐसा कानूनी संशोधन लाने जा रही है जिसके तहत उन्हें हर साल दिसंबर तक आय का ब्यौरा दाखिल करना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें मिली छूट खत्म हो जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार, अमेरिका में कुछ देशों से आने वाले लोगों पर लगे बैन के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वीजा की प्रक्रिया को और सख्त बना सकते हैं। अखबार के अनुसार ट्रंप इससे संबंधित एक आदेश जारी कर सकते हैं जिसमें वीजा प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। अखबार में छपी एक अन्य खबर के अनुसार, पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा के संस्थापक और जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद की नजरबंदी पर पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि यह फैसला देश हित में लिया गया है। अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ कफूर ने कहा है कि जहां तक हाफिज सईद की पाबंदी का ताल्लुक है, ये एक पॉलिसी डिसीशन है और सरकार ने राष्ट्रीय हित में लिया है।
और अब समय है वॉशिंगटन डायरी का, ब्रजेश उपाध्याय से।
ब्रेकिंग न्यूज, वॉशिंगटन के चिड़ियाघर से एक जंगली बिल्ला भाग निकला है। आसपास के स्कूलों में चेतावनी जारी की गई है कि नजर आने पर उसके आसपास न जाएं और फौरन पुलिस को खबर करें। बिल्ला मूलतः मेक्सिको और कनाडा के जंगलों से है, लेकिन उसने जब से होश संभाला है खुद को अमरीकी ही समझता रहा है। उसकी नस्ल के हजारों बिल्ले बरसों पहले अमरीकी जंगलों में घुस आए और यहाँ फल फूल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार चिड़ियाघर में बिल्ले के पिंजड़े के पास ही 2-3 मगरमच्छ हैं जो फ्लोरिडा राज्य से हैं और खुद को बिल्कुल कुलीन वर्ग का अमरीकी मानते हैं। उन्हीं में से एक ने बिल्ले से कहा था कि देश में नया राजा आया है और वो उसे वापस मेक्सिको भेजने जा रहा है। वैसे ये मगरमच्छ ये भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि इस राजा के राज में वो जिसे चाहें, जहां चाहें, जब चाहें दबोच सकते हैं, क्योंकि राजा खुद भी ऐसा कर चुके हैं। चिड़ियाघर में घबराहट का माहौल है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि राजा का अगला फरमान क्या होगा और यहाँ का बाहुबली कौन होगा। यहाँ रहने वाले बाघ और हाथी दोनों ही भारतीय मूल के हैं। वो भी चिंतित हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि राजा के एक जानने वाले भारतीय ने उनसे कहा है कि उन पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि राजा को फिलहाल उनकी जरूरत है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि एक बाघ जो कुछ साल पहले सरहद पार करके पाकिस्तान चला गया था, वो खासा परेशान है। किसी ने उसे भी मगरमच्छ से बात करते हुए देखा था। पैंडा चीन से यहाँ आया है और उसके बारे में सबको पता है कि वो चीनी है। वो भी वापस नहीं लौटना चाहता और इन दिनों मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली लाल टोपी पहनकर घूम रहा है। टोपी चीन में बनी है। बाकी जानवरों ने जब से ये सुना है कि 7 देशों पर राजा की इन दिनों खास नजर है, तब से वो भी पता करने में लगे हैं कि वो मूलतः किस देश से हैं। काले मुंह वाला लंगूर अपने पिंजड़े के अंदर ही लगे पेड़ की ऊंची टहनी पर चुपचाप बैठा हुआ है। उसे वहां से राजा का महल बिल्कुल साफ नजर आता है। महल बिल्कुल सफेद है और इन दिनों खूब चमक रहा है। नई नई सफेदी हुई है। 8 साल से नजर आ रहे काले धब्बे बिल्कुल साफ हो गए हैं। उसने रेडियो पर सुना है कि अमेरिका ने 8 साल पहले की गई एक गलती सुधार ली है। अब हर जगह सफेद का बोलबाला है। मुल्क भी सफेद, महल भी सफेद, राजा भी सफेद। लंगूर को इन दिनों महल के आसपास से अक्सर देशभक्ति के नारे सुनाई देते हैं और हर जगह अमेरिका फर्स्ट की गूंज सुनाई देती है। राजा के बारे में उसने सुना है कि वो कूटनीति नहीं ट्रंप नीति में यकीन करते हैं, जो बगैर लाग लपेट वाली होती है। अगर किसी दूसरे देश के राजा की बातें पसंद नहीं आईं तो सीधा फोन काट देते हैं। किसी को धमकाना हो तो ट्विटर पर धमकी दे डालते हैं। राजा दबंगई में यकीन रखते हैं और खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर कहलाना पसंद करते हैं। काले मुंह वाले लंगूर ने पड़ोस के घर की ड्राइंग रूम में चल रहे लोमड़ी न्यूज चैनल पर सुना है कि राजा सूरज के साथ डील कर रहे हैं कि उसकी रोशनी सिर्फ अमरीका पर पड़े और बाकी अगर उसका इस्तेमाल करें तो उन्हें अमरीका को उसकी कीमत अदा करनी होगी। तारों से भी बात चल रही है कि खुले आसमान में जब वो चमकें तो लड़ी ऐसी बनाए कि राजा का नाम उसमें लिखा नजर आए। लंगूर ने फेक न्यूज के बारे में सुन रखा है, लेकिन सवाल नहीं उठाता, क्योंकि उसे डर है कि राजा उसे भी मीडिया वालों की तरह बेईमान न कहने लगे। वैसे भी वो दुनिया भर की खबरों से वाकिफ रहता है, रेडियो सुनता रहता है और उसे पता है कि इन दिनों खुद को लोकतंत्र कहलाने वाले एक देश में ब्लॉगरों को उठा लिया जा रहा है और दूसरे में हिंदू मुसलमान के इश्क की कहानी फिल्माने वाले डायरेक्टर की धुनाई हो रही है। उसे मालूम है राजा टीवी बहुत देखते हैं और अगर उन्हें ये बात पता चली तो क्या पता वो यहाँ के लोकतंत्र में भी ये तरकीबें इस्तेमाल करने लगे। आखिर राजा पहले से भी अपनी कंपनियों में बाहर की बनी चीज़ें ही इस्तेमाल करते रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, जंगली बिल्ला वापस चिड़ियाघर लौट आया है। उसकी सघन पूछताछ चल रही है। वो कहाँ गया था, किससे मिला, किसी मस्जिद के आसपास तो नहीं गया, वगैरह वगैरह। सूत्रों के अनुसार उसने फिलहाल यही बताया है कि उसे बंद दड़बे में रहने की आदत पड़ चुकी है, खुला जंगल उसे रास नहीं आया, इसलिए लौट आया। राजा की प्रतिक्रिया क्या होगी, उसके लिए उनकी अगली ट्वीट का इंतजार किया जा रहा है। ब्रजेश उपाध्याय, बीबीसी न्यूज, वॉशिंगटन।
ब्रजेश उपाध्याय की डायरी आपको कैसी लगी हमें बताना भूलिएगा मत। और अब चलते हैं अमेरिका के खेल से, खेल की खबरों की ओर, राखी शर्मा से।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। आज सभी भारतीय टेनिस प्रशंसकों की नजरें अपने खिलाड़ी लियांडर पेस पर लगी होंगी। पेस भारत से कमजोर न्यूजीलैंड के खिलाफ आज से शुरू होने वाले एशिया ओसनिया ग्रुप डेविस कप मुकाबले में शायद आखिरी बार खेलते दिखाई देंगे। पेस के पास ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका है। 18 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन पेस अपने 55वें डेविस कप मुकाबले में उतरेंगे और अगर वो अपना डबल्स मुकाबला जीते हैं तो इटली के निकोला के 42 डेविस कप जीत को पार कर इतिहास के सबसे सफल डबल्स खिलाड़ी बन जाएंगे। और वहीं ब्लाइंड टी20 विश्व कप 2017 के अपने 5वें मैच में आज भारतीय टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय टीम अब तक खेले अपने 4 मैचों में से 3 जीतने में कामयाब रही है और इकलौती हार उसे पाकिस्तान के खिलाफ मिली। तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी और सुकन्या परिदा 7 से 21 फरवरी तक कोलंबो में होने वाले आईसीसी महिला विश्व कप क्वालिफायर से बाहर हो गई हैं। झूलन की जगह अब सोनी यादव और सुकन्या की जगह मोना मेशरम को 14 सदस्यों वाली टीम में शामिल किया गया है।
और अब हम पहुँच चुके हैं कार्यक्रम के अंत की ओर। समय है मुख्य समाचारों का।
बीबीसी समाचार। भारत के 2 राज्यों पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार गुरुवार शाम थम गया है। दोनों राज्यों में कल मतदान होगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में हजारों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी कोहिमा में मुख्यमंत्री आवास को घेर लिया है और कई सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निकी हेली ने संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने पहले भाषण में यूक्रेन में रूस की आक्रामक कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि अमेरिका यूक्रेन की सरकार के साथ है। रोमानिया के बुखारेस्ट में और कई अन्य शहरों में हजारों लोग सरकार के उस फरमान का विरोध करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं जिसके अनुसार कुछ तरह के भ्रष्टाचार को मान्यता मिल जाएगी। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान, पंकज प्रियदर्शी और मानसी दास को अनुमति दीजिए। और इस बीच अगर आप पल पल की बदलती खबरों पर नजर रखना चाहें तो आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। नमस्कार।